सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो कैसे किया जिसने बहुत से पा। महाराज का कहना था कि हर राम नाम के उपासक को अपने घर में अधिष्ठान श्री अधिष्ठान जरूर अवश्य रखने चाहिए। अधिष्ठान किसे कहते हैं उससे पहले ये जानना है। महाराज को कहा गया था, महाराज आपने निराकार की निरालंब उपासना की, निरालंब मतलब बिना सारे के बिना अवलंबन के, और उसके जिसका कोई आकार नहीं है, नाम रूप जिसका नहीं उसके हैं सब नाम। लेकिन हम देहधारियों के लिए गृहस्थियों के लिए जब तक कोई साकार रूप में कोई चिन्ह परमेश्वर का को प्रतीक ना हो तो मन की एकाग्रता नहीं होती। तो कोई ऐसा चिन्ह प्रतीक परमेश्वर का दीजिए जिसको हम परमेश्वर का आराध्य देव इष्ट देव समझकर उसकी उपासना कर सकें। तुम्हारा इन्हें ध्यान अवस्था में होकर जो परमेश्वर का स्वरूप उनको चित्रित हुआ उनके मस्तिष्क में, उनको अधिष्ठान के रूप में महाराज ने जो आपके सामने है वो बनाया और उसको परमेश्वर का स्वरूप जानने के लिए प्रेरणा दी। महाराज का कहना था कि जैसे ऊंचे मकानों पर बिजली के आसमानी बिजली के प्रकोप को रोकने के लिए कला लगाई जाती है, ऐसे ही जो राम नाम है सरल समाधि हरे सब आदि व्याधि उपाधि। ये आदि व्याधि और उपाधि जो विपत्तियां हैं इनको हरण करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए महाराज ने कहा है कि हर घर में राम नाम का उपासक जो है सच्चा उपासक है उसके पास अधिष्ठान होना ही चाहिए। तो उसके लिए महाराज ने कुछ नियम बताए हैं। पहला तो ये है कि अधिष्ठान अगर पहले जमाने में लोग जब घर बनाते थे तो सबसे पहले देव घर होता था, परमेश्वर का घर बनाते थे, पहले देव घर बनाते थे फिर अपना घर बनाते थे। अगर आपके पास देव घर है, जाप वाला कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इसको लेमिनेशन करा लो, चाहे इसके ऊपर फ्रेम लगवा लो अधिष्ठान के ऊपर। लेकिन कोशिश करनी है आप पास बैठ के करें, ये कई दफ़ा काट देते हैं कुछ कर देते हैं, इसको फ्रेम करा के या लेमिनेट करा के अगर आपका पूजा का कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इसको स्थापित करना है। स्थापित करने के लिए उसको अधिष्ठान के आगे बैठकर 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे का अखंड जाप रख लिया, नमस्कार सप्तक पढ़ने के पश्चात ये इसका स्थापना है। दूसरा मारे का कहना था कि इसको ढक के रखना है ताकि इसका अनादर ना हो, क्योंकि अनादर होने पर इष्ट देवता रुष्ट होकर आक्रमण भी कर सकता है, बराए आपके विपत्ति हरण होने के विपत्ति आ भी सकती है अगर अधिष्ठान का अनादर होता है। तो उसके लिए इसके ऊपर कपड़े से ढक के रखना है। जब पूजा करनी हो, जाप करना हो, सिमरन करना हो, सामने बैठ के पर्दा हटा दीजिए, जाप करके पर्दा फिर रख दीजिए। कई पूछते हैं कि क्या ज्योति का जलाना बहुत ज़रूरी है, और जलाना है तो कितनी देर तक जलाना है, शांत करना है नहीं करना। तुम्हारा क्या कहना था, जो हम ज्योति जलाते हैं वो केवल मन की एकाग्रता में सहायता देती है, इसलिए ज्योति को जलाते हैं। मन में एक भावना होती है, जब हम कहते हैं कि जोत से जोत जला दो सतगुरु, जोत से जोत जला दो, मन में भाव आता है कि जैसे ये ज्योति बाहर प्रज्वलित हो रही है, मेरे घट मंदिर में भी ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो। लेकिन महाराज के शब्दों में, अगर कोई घी या तेल दोनों का उसका नहीं है, उसके वित्तीय साधन उसके बस में नहीं है इतना खर्चा करना, तो कोई आवश्यक नहीं है ज्योति का जलाना। परमेश्वर ने सूर्य देवता की ज्योति स्थापित कर रखी है आपके लिए, इसलिए ये वहम नहीं करना। अगर कोई नहीं उसको उसके मुताबिक खर्चा कर सकता है या उसके साधनों से दूर है, तो उसकी फिक्र नहीं करना। सूर्य देवता की ज्योति है, दूसरी ज्योति है, उसका वहम नहीं करना। ज्योति जलाइए तो बहुत अच्छी बात है, जलती रहे तो भी ठीक है, शांत करनी हो तो भी ठीक है। तीसरा, लोग पूछते हैं कि अधिष्ठान, अगर जब हम बाहर जाते हैं घर से बाहर, तो क्या हम साथ ले जा सकते हैं? महाराज ने कहा था साथ ले जा के सकते हैं, अपने अटैची में रख के ले जाइए, जब जाप करना हो निकाल दिया, लेकिन आदर के साथ रखना है। जिनके पास कमरा है बहुत अच्छी बात है, कमरे में रख सकते हैं। कमरा नहीं है तो कोई अलमारी होगी, अलमारी में एक खाना साफ करके बना लीजिए, उसमें अधिष्ठान को कपड़े से ढक के रख लिया, जब जाप करना हो पूजा करने हो पर्दा हटा लिया, आगे पीछे फिर पर्दे में रख लिया। आपके पास कमरा भी नहीं है, अलमारी भी नहीं है, तो हमारा क्या कहना था, कोई एक आध ऐसा संदूक होगा जिसमें आप सारा सामान रखते हो, आप उसमें भी संभाल के रख सकते हो। भावार्थ क्या है कि इस अधिष्ठान का स्थान हमारे हृदय में है, इतना स्थान से संबंध नहीं जितना हमारे हृदय के संबंधित है। जैसे आप अपनी अनमोल वस्तु को रखते हो, ऐसे ही अधिष्ठान को रखना है। तो मुझे ये अधिष्ठान के बारे में इसलिए कहना था, कई पूछते हैं कि हमें अधिष्ठान लेना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो महाराज ने जो नियम बताए हैं उन नियमों के अनुसार ही मैंने आपको बताया है। लेकिन एक याद रखना, अधिष्ठान का अनादर करने से घर में आपत्ति आ सकती है। और दूसरा मुझे कहना है कि जहाँ अधिष्ठान रखना हो वहाँ और ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा साई एक तू दूजा नाही कोई, दूजा साई क्या करूँ तो इसका और न कोई। अगर अधिष्ठान में सच्ची आस्था, ये नहीं कोई मूर्तियों के निरादर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस कमरे में अगर 20 मूर्तियां रखी हैं, अधिष्ठान रखी हैं, तो आप किसका ध्यान करोगे? ध्यान तो एक का ही करोगे ना। तो उस भटकन से बचने के लिए अधिष्ठान जहाँ स्थापित किया है वहाँ अधिष्ठान होगा, क्योंकि निष्ठा एक जगह होती है, आस्था एक जगह होती है। परमेश्वर का रूप कोई नहीं है, लेकिन जो भी रूप आपको मन में भक्ति भाव के लिए प्रेरणा दे, उसी एक रूप को रखिए। जो जन भटके स्थान सब एक न निश्चय वान, धोबी का कुकर कहा बिना घाट घर जान। जो जगह जगह भटकता है, क्योंकि जो सबको रिझाता है वो किसी को नहीं रिझा पाता, और जो एक को रिझा देता है वो सबको रिझा देता है। तो मुझे यही कहना है कि आस्था रखनी है तो ये कहीं भी रखिए, उसमें कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है। महाराज का कहना था कि राम नाम में शक्ति है, राम नाम सुखदायक है, राम नाम परमेश्वर का रूप है, ये तो आस्था है, लेकिन केवल राम नाम उद्धार करता है ये मत है। तो केवल नहीं है, जिसमें भी आपकी आस्था हो वहीं आस्था रखिए, उसको डावाडोल नहीं होने देना। अधिष्ठान रखना है तो फिर अपनी पूरी निष्ठा और आस्था अधिष्ठान की तरफ रखनी है। अगर उसके चारों तरफ चित्र लगा दोगे और कुछ कर दोगे तो आपकी आस्था डगमगा जाएगी और कमजोर हो जाएगी। यही कहना था मुझे अधिष्ठान के लिए। क्योंकि महाराज कहते थे कि हर राम नाम के उपासक के पास अधिष्ठान जरूर होना चाहिए, क्योंकि राम नाम है सर्व समाधि, हरे सब आदि व्याधि।